एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
जीवन के राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। जीवन के राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। पल दो पल का जीवन है, प्रेम का कितना मोल है। पल दो पल का जीवन है, प्रेम का कितना मोल है। समझ न पाए अगर यीशु को, यीशु से नाता न तोड़ दे। समझ न पाए अगर यीशु को, यीशु से नाता न तोड़ दे। बिगड़ भी जाए राहों पर, तुझे वही संभालेगा। जीवन के राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। जीवन के राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में, यीशु सहारा तेरा। ये संसार अभिलाषा छोड़, यीशु मसीह तक बढ़ते चल। ये संसार अभिलाषा छोड़, यीशु मसीह तक बढ़ते चल। अगर तू मसीह के संग चले, फूलों की खुशबू साथ फले। अगर तू मसीह के संग चले, फूलों की खुशबू साथ फले। बिगड़ भी जाए राहों पर, तुझे वही संभालेगा। जीवन के राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। जीवन की राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। जीवन की राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, फिर से आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। मैं आज आपके सामने जो शीर्षक पर बोलूँगा वह है एक बच्चे के रूप में। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को तू ग्रहण कर और हमें तेरे वचन सुनने के लिए मदद कर, हमें बुद्धि और ज्ञान दे। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, वे तेरे वचनों को सुन सके से समझ सके और उसके अनुसार चलने सके। पिता मेरे संग हो, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, मुझे मदद कर, मुझे तेरे आत्मा के द्वारा चला कि मैं तेरे वचनों को अच्छी तरह से बतला सकूं और हरेक सुनने वालों को आशीष मिले। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। एक बच्चे के रूप में यीशु का बचपन और युवा अवस्था एक छोटे से पहाड़ी गांव में बीता था। इस पृथ्वी पर कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जो उसकी उपस्थिति से गौरवान्वित ना हुआ होता। राजाओं के राजमहल उसको अपना अतिथि पाकर धन्य हो जाते, परंतु उसने धनवानों की हवेलियों और राजघरानों के राजसभा विद्वानों के प्रसिद्ध आसनों को अनदेखा करके एक छोटे से तुच्छ गांव नाजरत को अपना निवास स्थान बनाया। उसके जीवन का संक्षिप्त वृत्तांत बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण और आश्चर्यजनक है। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। अपने पिता की छवि के प्रकाश में यीशु बुद्धि और डीलडोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया, जिसे हम लुका 2:52 में पाते हैं। उसकी बुद्धि अति कुशाग्र और क्रियाशील और विवेकपूर्ण तथा आयु से भी अधिक लगती थी। फिर भी उसका स्वभाव अति सुंदर और सलोना था। शरीर और बुद्धि दोनों का विकास लगातार बचपन के स्वाभाविक नियमानुसार होती रही। एक बालक के रूप में यीशु का स्वभाव विशेष रूप से अति सुंदर था। उसके हाथ सदा ही दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहते थे। उसमें ऐसी शालीनता थी कि कोई भी कारण उसमें बाधक नहीं बन सकता था और सत्यता ऐसी कि कभी भी सम्मान पर आँच न आए। सिद्धांत में तो चट्टान जैसे सुदृढ़ रहा और उसका जीवन निस्वार्थ विनम्रता के अनुग्रह को प्रकट करता था। बड़ी गंभीरता और ईमानदारी के साथ यीशु की माता मरियम उसके सद्गुणों को उजागर होते हुए और उसके चरित्र पर विशुद्धता की छाप को देख रही थी। बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके शुद्ध आचरण और ग्रहण योग बुद्धि के लिए उसे उत्साहित करती रहती थी। पवित्र आत्मा के द्वारा उसे ज्ञान मिला कि वह उस बालक की उन्नति में स्वर्गीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्य करे ताकि वह परमेश्वर को ही अपने पिता का सम्मान दे। प्राचीन काल से ही जो इसराइलियों में विश्वासी लोग थे वे नवयुवकों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देते थे। यहोवा ने निर्देश दिया था कि बचपन से ही बच्चों को उसकी महानता और भलाई करने की सहृदयता को सिखाया जाए, विशेषकर जो उसकी आज्ञाओं में प्रकट की गई और इसराइलियों के इतिहास में पाई जाती हैं। उनकी बुद्धि विकास के लिए गीत, प्रार्थना और पवित्र शास्त्र का अध्ययन कराने को प्राथमिकता दी जाए। माता पिता अपने बच्चों को समझाए कि परमेश्वर की आज्ञाएं उसके चरित्र को प्रकट करती हैं और यदि उनके सिद्धांतों को वे अपने हृदय में बिठा लें तो परमेश्वर की छवि उनके मनो मस्तिष्क में छा जाएगी। अधिकतर शिक्षाएं मौखिक हुआ करती थी, परंतु नवयुवक इब्रानी भाषा को लिखना पढ़ना भी सीखते थे और पुराने नियम के धर्म शास्त्र को जो चमड़े पर लिखे हुए होते थे उनकी शिक्षा के लिए अधिकृत थे। मसीह के दिनों में जिस गांव या नगर में नवयुवकों के लिए धार्मिक शिक्षा का प्रबंध नहीं होता था उसे परमेश्वर की ओर से अभिशापित माना जाता था। फिर भी शिक्षा नियमित रूप से दी जाती थी। पवित्र शास्त्र की शिक्षा का स्थान अधिकतर परंपराओं ने ले लिया था। सही शिक्षा नवयुवकों को प्रेरित करेगी कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं। प्रेरितों के काम 17:27 में इसे हम पाते हैं। परंतु यहूदी शिक्षक रीतियों विधियों की बातों को अधिक महत्व देते थे। विद्यार्थियों के मनोमस्तिष्क में व्यर्थ की बातों को भर दिया जाता था जिसे स्वर्गीय विद्यालय में कोई मान्यता प्राप्त नहीं थी। परमेश्वर के वचन द्वारा जो ज्ञान व अनुभव मिल सकता था उसके लिए उनकी शिक्षा पद्धति में कोई स्थान नहीं था। बाहरी बातों में व्यस्त रहने के कारण विद्यार्थियों को समय नहीं मिल पाता था कि कुछ क्षण शांति से परमेश्वर के साथ बिताएं। उन्होंने अपने हृदय से बातें करते हुए परमेश्वर की आवाज़ को कभी नहीं सुना। ज्ञान की प्राप्ति की खोज में ज्ञान के स्रोत से ही दूर होते गए। परमेश्वर की सेवकाई के लिए अति आवश्यक बातों पर ध्यान नहीं लगाए। जिन शिक्षाओं को वे उच्चतम मान बैठे थे वे शिक्षाएं वास्तविक विकास में बाधक थी। रबियों के अधीन परीक्षण लेने से नवयुवकों की शक्ति का ह्रास हुआ। वे तंग और संकुचित विचारों वाले बन गए। बालक यीशु आराधनालय के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं किया। उसकी माता ही उसकी पहली मानव शिक्षक थी। भविष्यवक्ताओं के लेखों और स्वयं उसके मुंह से स्वर्गीय बातों को उसने सीखा। जिन शब्दों को उसने स्वयं इसराइलियों के लिए मूसा से कहे थे उन्हें ही अपनी माँ के गोद में सीखा। वह बचपन से नौजवानी में कदम रखा परंतु रबियों के विद्यालय में नहीं गया। वह ऐसी संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहता था। उसका शिक्षक तो परमेश्वर स्वयं था। उद्धारकर्ता की सेवकाई के समय एक प्रश्न पूछा गया था कि इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई, यूहन्ना 17:15। यह इस बात का संकेत नहीं देती है कि यीशु पढ़ा लिखा नहीं था। हाँ, रबियों के स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं किया था, हमारी तरह ही उसने भी शिक्षा और ज्ञान को प्राप्त किया था। परंतु धर्मशास्त्र का ज्ञान यह संकेत करता है कि आरंभ से ही परमेश्वर के वचन का अध्ययन कठिन परिश्रम से किया था। उसके समक्ष परमेश्वर की सारी सृष्टि ही एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था जिसने सारे जगत को बनाया था। उसी से उसने शिक्षा प्राप्त किया जिसे उसने पृथ्वी, समुद्र और आकाश पर अपने हाथों से लिख दिया था। संसार के अपवित्र संसाधनों से हटकर उसने प्रकृति से वैज्ञानिक और साहित्य ज्ञान का खजाना प्राप्त किया। उसने पौधों, पशुओं और मनुष्यों के जीवन का अध्ययन किया। अपने आरंभिक दिनों से ही वह केवल एक बात में धनी रहा कि दूसरों को आशीष दे। इसके लिए प्रकृति में उसे स्रोत मिला। जैसे जैसे पौधों और पशुओं के जीवन का अध्ययन करता गया, उसे नए विचार और नए मार्ग मिलते गए। लगातार वह उनसे शिक्षा प्राप्त करने का प्रयत्न करता ताकि उनके उदाहरणों द्वारा परमेश्वर के जीवित वचन को दूसरों के सामने रख सके। अपनी सेवकाई के समय दृष्टांतों द्वारा लोगों को परमेश्वर के राज्य के विषय में सिखाने से पता चलता है कि वह प्रकृति से कितना ज्ञान प्राप्त करता था। आध्यात्मिकता की बातों को समझाने और सिखाने में उसके आसपास का प्रतिदिन का वातावरण उसका सहायक बना था। जब यीशु प्रत्येक बातों के तर्कों को समझने का प्रयत्न कर रहा था तो उस पर वचन की महत्वता और परमेश्वर के कार्य प्रकट हुए। स्वर्गीय शक्तियां उसकी सहायता और उसके विचारों का आदान प्रदान कर रही थी। बुद्धिमानी की पहली किरण के साथ लगातार आध्यात्मिक अनुग्रह और सत्य के ज्ञान में बढ़ता गया। प्रत्येक बच्चा यीशु जैसे ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जब हम उसके वचन द्वारा स्वर्गीय पिता से जान पहचान कर लेंगे तो स्वर्गदूत हमारे समीप आ जाएंगे, हमारा स्वभाव मजबूत हो जाएगा और हमारा चरित्र उत्पन्न और शुद्ध हो जाएगा। हम लगभग अपने मुक्तिदाता के समान बन जाएंगे और जब हम प्रकृति की सुंदरता और महानता पर दृष्टि करेंगे तो परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाएगा। जब हमारा संबंध अद्वैत परमेश्वर से उसके कामों द्वारा हो जाएगा तो हमारी प्रवृत्ति श्रद्धापूर्ण भय से और आत्मा अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। जब हम प्रार्थना द्वारा परमेश्वर से वार्तालाप करने लगेंगे तो मानसिक और आत्मिक शक्ति में उन्नति हो जाएगी और हम आध्यात्मिकता की बातों में मन लगाने लगेंगे। यीशु का जीवन एक ऐसा जीवन था जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप था। जब वह एक बालक था तो बच्चों जैसी बातें वह व्यवहार करता था, परंतु किसी पाप की छाया ने उसके मन पर खुदी हुई परमेश्वर की छवि को धुंधला नहीं कर सकी थी। फिर भी वह परीक्षा में पड़ जाने से मुक्त नहीं था। नासरत के रहने वाले लोग दुष्टता करने में जग प्रसिद्ध थे। उनका निष्ठापूर्ण व्यवहार करना एक सामान्य सी बात थी। तभी तो नतानियल ने एक प्रश्न किया था, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाजरत से निकल सकती है? यीशु को उस स्थान में रखा गया जहां उसके चरित्र की परीक्षा हो सके। अपनी पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए उसे लगातार अपनी चौकसी करनी थी। जिन विरोधों का सामना हमें करना पड़ता है उसे भी उन सभी विरोधों का सामना करना पड़ा था ताकि वह हमारे बचपन, जवानी और पूर्ण मनुष्य के लिए एक नमूना बने। यीशु नाजरी पर विजय प्राप्त करने के लिए शैतान अपने प्रयत्नों में थका नहीं था। अपने आरंभिक दिनों से ही यीशु स्वर्गीय स्वर्गदूतों की देखरेख में था। फिर भी उसका जीवन अंधकार की शक्तियों के साथ एक लंबा और संघर्षपूर्ण जीवन था। इस पृथ्वी पर यदि एक भी जीव भ्रष्ट होने से बच जाए तो यह उस अंधकार के राजकुमार के लिए बड़ी चिंता और दुख की बात थी। यीशु को अपने जाल में फंसाने के किसी भी उपाय को उसने रख नहीं छोड़ा था। जिस संघर्षमय और परीक्षापूर्ण जीवन का सामना यीशु को करना पड़ा था वैसा संघर्ष किसी भी दूसरे बच्चे को नहीं करना पड़ेगा। यीशु के माता पिता गरीब थे और अपने प्रति दीन के परिश्रम पर आश्रित थे। वह गरीबी, अभाव और असहायपूर्ण जीवन से परिचित था। उसकी सुरक्षा के लिए यह अनुभव उसका सहायक बना। उसके कठिन और परिश्रमपूर्ण जीवन में किसी परीक्षा को आमंत्रित करने का अवसर ही नहीं था। भ्रष्ट लोगों के बीच उठने बैठने का कोई क्षण उसके पास था ही नहीं। जहां तक हो सके उसने परीक्षा लाने वाले के लिए दरवाजा बंद कर रखा था। ना तो लाभ और ना ही आनंद, ना प्रशंसा और ना ही आलोचना उसे गलत काम करने के लिए बहकाने में सफल हो सकी। वह बुराई को पहचानने और उससे अपने आप को बचाने में चतुर था। इस धरती पर जितने भी मनुष्य हुए हैं उनमें से केवल एक मसीह ही निष्पापी था। फिर भी लगभग 30 वर्ष तक दुष्ट नाजरतियों के बीच में जीवन बिताया। यह सच्चाई उन लोगों के लिए एक फटकार है जो यह सोचते हैं कि निष्कलंक जीवन बिताना स्थान, भाग्य और धन संपत्ति पर निर्भर करता है। यीशु बचपन और नौजवानी में अपने हाथों से काम करता रहा, इसलिए उसका मन और शरीर दोनों में विकास हुआ था। उसने अपनी शारीरिक शक्ति को असावधानी से उपयोग नहीं किया, परंतु इस प्रकार से प्रयोग किया कि स्वस्थ रहे तथा प्रत्येक कार्य को भली भांति कर सके। इस पृथ्वी पर अपने पूरे जीवन भर लगभग एक ईमानदार कार्यकर्ता बना रहा, क्योंकि वह अधिक चाहता था, इसलिए उसने पाने के लिए अधिक परिश्रम करने का भी प्रयत्न किया। एक परिश्रमी मनुष्य बनने के लिए उसने स्वयं का आदर्श प्रस्तुत किया ताकि हमारा प्रत्येक कार्य सही और संपूर्ण हो। जब अपनी सेवकाई के कार्य को आरंभ किया तो उसने कहा था, जिसने हमें भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। इसे हम यूहन्ना 9:4 में पाते हैं। यीशु किसी भी जिम्मेदारी के काम से पीछे नहीं हटा, जैसा कि बहुत से उसके अनुयायी कहलाने वाले करते हैं। जब तक वह मनुष्यों के बीच रहा, हमारा मुक्तिदाता गरीबों का सहभागी बना। अपने अनुभव से वह उनकी कठिनाइयों और चिंताओं से परिचित था, इसलिए प्रत्येक विनम्र कार्यकर्ता को वह सुख और साहस प्रदान करता है। जिन लोगों ने उसके जीवन की सही शिक्षा को अपने हृदय में बिठा लिया है, वे कभी नहीं सोचेंगे कि लोगों के बीच भेदभाव हो और योग्य गरीब से बढ़कर धनवान का सम्मान किया जाए। अपने परिश्रम के कार्य में यीशु सदा ही प्रफुल्लता और कुशलता का प्रयोग किया। गीतों द्वारा वह स्वर्ग से बातचीत करता था और जब उसके साथी मजदूर थके मांदे उसके पास आते थे और शिकायत करते थे, तो वह अपने होठों से मीठी राग सुनाकर उन्हें प्रफुल्लित कर देता। उसकी स्तुति बुरे स्वर्गदूतों को वहां से भगा देती और सुगंधित धूप की तरह उस स्थान को महक से भर देती। उसके सुनने वालों का मन इस धरती की चिंताओं से मुक्त होकर स्वर्गीय घरों में पहुंच जाता। यीशु संसार के लिए दया की चंगाई का श्रोता था। यीशु शरीर और बुद्धि में बढ़ता गया, परमेश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में भी उठता गया, पर यीशु दिखावे से बचता रहा। यीशु हमारा आदर्श है। उसका घरेलू जीवन बच्चों तथा नवयुवकों सभी के लिए एक उदाहरण था। उद्धारकर्ता ने अपने आप को गरीबी में उतार लिया ताकि हम यह सीख सकें कि ऐसी दशा में भी विनम्रता से परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। यीशु जीवन के साधारण सी बातों से भी अपने पिता को प्रसन्न करने, सम्मान देने और उसकी महिमा को प्रकट करने का प्रयत्न किया। अपनी रोज की रोटी के लिए एक छोटे से बढ़ईगिरी के व्यवसाय द्वारा उसने परिश्रम भरे काम को आरंभ किया। चाहे वह बढ़ईगिरी की मेज पर काम कर रहा हो, चाहे भीड़ भरे लोगों के लिए चंगाई का काम कर रहा हो, वह उसी प्रकार से परमेश्वर का कार्य कर रहा था। और हर एक नवयुवक जो ऐसे ही विनम्र घरों में रहते हुए ईमानदार और आज्ञाकारी बनकर मसीह के पीछे चलता है, उसके लिए स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा द्वारा वही शब्द कहेगा, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिसे मेरा जी प्रसन्न है। इसे हम यशया 42 का 1 में पाते हैं। यह यीशु मसीह के लिए लिखा गया था, लेकिन भविष्यवाणी की यह बात हर एक वह बच्चा और नौजवान के लिए होगा जो ईमानदारी से काम करता है और परमेश्वर पर भरोसा करके अपना जीवन यापन करता है। हमारे लिए यीशु मसीह एक अच्छा आदर्श है, एक बच्चा के लिए और नौजवान के लिए और हर एक मनुष्य के लिए। इसीलिए चलिए हम यीशु के आदर्श को पीछा करें और उसके समान बने। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा मदद करेगी यदि हम परमेश्वर से विनती करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे जब आप यीशु के पीछे उसके समान बनने का निर्णय लेते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर मौका के लिए कि हम यीशु मसीह के जीवन को पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह के बालक जीवन को जान सकते हैं कि कैसे वह तुझ पर भरोसा करके एक परिश्रमी, ईमानदार और दूसरों को सहायता करने वाला जीवन बिताया। हमें भी यीशु का आदर्श को पीछा करने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा मदद कर, हमें बुद्धि और सामर्थ दे। हम तेरे हाथों में समर्पित होते हैं पिता, हमारे पापों को क्षमा कर और हम सबों को, मेरे श्रोताओं को भी आशीष दे। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन।
दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।